نے ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح جو ہے آپ کی تیسری میراث وہ روایات ہیں جو آپ نے وقتاً فوقتاً تدریس و تعلیم کی شکل میں یا اصحاب کے سوال و جواب کی شکل میں ارشاد فرمایا ہے. اور اس سے بڑی ایک میراث جو کہ ہمارے دسترس میں نہیں ہے, اور صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور حضرت بقیۃ اللہ کے حضور میں موجود ہے, وہ کتاب ہے جو صحیفہ یا مصحف فاطمیہ یا فاطمہ کہلاتا ہے. اور اس کتاب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی وفات اور رحلت کے بعد جبریل امین تشریف لاتے تھے بیت سیدہ کائنات میں اور کچھ الہی پیغامات دیا کرتے تھے, اور سیدہ کائنات بعد میں وہ الہی پیغامات کو املاء کرتی تھیں, ڈکٹیشن کرتی تھیں, اور مولائے کائنات اس کو لکھتے جاتے تھے, اور ایک کتاب کی شکل میں وہ چیز ڈل گئی, اور ائمہ علیہ السلام کو یہ کتاب یہ کے بعد دیگر میراث علمی و فکری و ملکوتی کی شکل میں سیدہ کائنات کی طرف سے یہ جو ہے سلسلہ چلتا رہا. اس وقت یہ کتاب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, البتہ اس کتاب کے سے منسوب کچھ کوٹیشنز موجود ہیں, کچھ حصے بعض کتابوں میں ہیں. اب اس کی اتھینٹیسٹی ان میں سے ہر ایک کی کتنی ہو سکتی ہے, یہ اکیڈمک باؤنڈریز کے اندر کی گفتگو ہے, اس کو ہم رہنے دیتے ہیں. پانچویں میراث آپ کی اولاد ہیں, آپ کی جو چار اولاد ہیں جن کی آپ نے تربیت کی ہے اس کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ایک غم کا ماحول ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں تاکہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں. پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ سیدہ کائنات کی ابتدائی زندگی, اگرچہ دیکھیں سیدہ کائنات کی ظاہری جو حیات طیب و طاہر ہیں اس دنیا میں وہ 18 سے 21 سال, مشہور روایات 18 سال اور بعض میں 21 سال یا اس کے آس پاس کی بیان ہوئی ہے, تو یہ ایک بہت ہی مختصر زندگی ہے اس دنیا فانی کے اندر. اب اس مختصر زندگی میں بھی جو آپ کی ابتدائی زندگی ہے, بچپنے سے لے کر ایک شادی کے قریب تک کی آپ کی عمر مبارک طیب و طاہر اور حتیٰ اس کے بعد تک بھی, تو جس طرح کی تفصیلات عام طور پر پائی جانی چاہیے تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. تاریخ کا ایک ستم کہیں یا تاریخ کی تاریکی کہیں کہ یا دشمنوں کی سازش و بغض کہیں یا دوستوں کی غفلت کہیں کہ وہ جس طرح کی باریکیوں کے ساتھ تفصیلات ہونی چاہیے تھیں اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں, کہ لیکن اس کے نہ ہونے سے کوئی چیز کمی واقع نہیں ہوتی ہے, ہوتی تو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ میں اضافہ ہوتا, لیکن نہ ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ شناخت و پہچان میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے. لہذا آپ کی سیرت طیب و طاہر کو آپ کے کلام سے, آپ کے بعد معصومین علیہ السلام کے کلام سے, آپ کے دور زندگی میں آپ کے حالات, اس وقت جو حالات وہاں پر تھے, اور اسی طرح پیغمبر خدا صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی جو حیات طیب و طاہر ہے اس کے آئینے میں زندگی کے اس مرحلے کے جزیات کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا جو ہے ہم اگر جو کیونکہ ہمارے نوجوان اور بچے یقیناً مجلس میں زیادہ ہیں اور میرا آج کا مخاطب بھی زیادہ تر وہیں بچے اور نوجوان ہیں, انہی کو میں نے مخاطب رکھا ہوا ہے آج, اور آئندہ کی مجالس میں انشاءاللہ خطبہ فدکیہ اور بیانات سیدہ کائنات جو کہ مدینہ کی خواتین کے درمیان رہیں اس پر گفتگو کریں گے, تو وہ شاید ممکن ہے تھوڑی سی اکیڈمک گفتگو ہو اور جو بچوں اور نوجوانوں کے لیے ممکن ہے کہ کم زیادہ جو ہے وہ نہ کرتی ہو, لہٰذا آج جو فوکس رکھا ہے وہ اس چیز کے اوپر رکھا ہے. آپ کی ولادت بعثت نبوی یعنی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی, کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت سے پہلے मुसलमानों की जो तारीख थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी, तो पैगंबर ग्रामी इस्लाम के ऐलान नबुवत से शुरू होती थी, जिसको बेअसत कहा जाता है। तो हम कहते थे कि बेअसत से 5 साल पहले ये वाकया हुआ, बेअसत के 5 साल बाद हुआ या 1 साल बाद हुआ, जब आपने हिजरत फरमाई तो फिर ये तारीख हिजरत से शुरू होने लग गई, हिजरत से 5 साल पहले, हिजरत से 10 साल पहले, हिजरत के 10 साल बाद, इसीलिए आप देखते हैं कि हिजरी तारीख शुरू हुई। तो जिनाब सैयद कायनात की विलादत ऐलान नबुवत यानी बेसत नबवी से 5 साल जो है, बेसत नबवी के 5 साल बाद हुई है। आप पैगंबर इस्लाम की इकलौती औलाद हैं, इकलौती बेटी हैं। आपकी वालिदा अरब मशहूर और अजीम उल मर्तबत खातून कबल इस्लाम और बाद इस्लाम उमुल मोमिनीन हजरत खतीजा हैं। आपकी शान मजलत ये है कि हदीस किसा जो हम पढ़ते हैं, उस हदीस व किसा का जो सेंट्रल पॉइंट है या जो मरकज है, जो महवर है, वो आपकी जाते मुबारक हैं। दो अजीम इमामों और दो अजीम बेटियों की आप वालिदा हैं, जो खुद अपने अंदर एक अजीम तारीख रखते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहि सलाम और हजरत जैनब और हजरत उम्मे कुलसूम अलैहि सलाम। आपकी एक पांचवी औलाद भी थी जिसका नाम पैदाइश से पहले मोहसिन रखा था और जो कि शहीद हुआ आपके बतन ताहिरो अतहरो मुतहर के अंदर ही शहीद हो गया, और यही सबसे बड़ा जो सितम का पहलू है फिजिकली, वो यही पहलू है कि इस कायनात की सैयदा के ऊपर इस तरह का जुल्म हुआ कि जुल्म की फिजिकल जो इंतहा थी वो इस लेवल तक आई थी कि आपको जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का शिकार किया गया और यहाँ तक कि आपका जो बच्चा पेट में था वो भी शहीद हो गया। कुरान मजीद की यूं तो पूरा कुरान मजीद सना खान सैयद जहरा है, लेकिन जो मशहूर और पॉपुलर कुरान मजीद की सूरे और आयात है उनमें से कुछ सूरह कौसर हैं जो जो कि पूरा का पूरा आपकी शान को बयान करता है। आये ततहीर हैं जिसमें मरकज व महवर हैं, आये इतआम है जो कि मिस्कीन व यतीम व असीर के लिए जो है इफ्तारी भेजने वाली आयतें हैं, जिसके ऊपर एक इंतहाई फजल व शान व करम व मंजिलत बयान की गई है, वो आपसे जो है क्या कहते हैं मरबूत है। ये एक मुख्तसर इंतहाई जो है अंगुलियों के अदद के अतबार से कुछ चीजें मैंने अर्ज की हैं जो हमारे बच्चे और नौजवान हैं उनके लिए, लेकिन जो आपकी शख्सियत का अहम पहलू है जहाँ से स्टार्ट होता है, वो मुसलमानों के लिए दरपेश फैसलाकुन मराहिल हैं जहाँ पर आपका किरदार नजर आता है। जैसे उनमें से एक बहुत ही फैसलाकुन मरहला है वो मुबाहिला का मरहला है। इसमें सच्चाई और झूठ के दरमियान फैसला करना था, लेकिन ये फैसला एविडेंस और प्रूफ के बजाय एक रूहानी और स्पिरिचुअल तरीके से अंजाम देना था कि भाई अगर कोई झूठा है तो गैब से, आलम गैब से उस झूठे के ऊपर क्या है अजाब नाजिल हो जाए, और इसके लिए ऐसे पाकीज़ा अफराद का ही इंतखाब मुमकिन था जो इसमें इस तरह का मुकाबला या इस तरह का एक मुबाहला करें कि गैब से उसके राह हल को और उसके फैसले को तलब किया जाए जिसमें आप शरीक हैं। आप 5 साल की एज में थी जनाब सैदा कायनात, आपकी वालिदा जो है हजरत खतीजा सलाम अलैहा वफात पा जाती हैं। अब अंदाजा लगा लें, एक तरफ जो है नबुवत का ऐलान हो चुका है, क्राइसिस हैं, मसाइल हैं हुजूर पाक के लिए, और इसी दौरान में हजरत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन जैसी एक अजीम सपोर्टर मददगार खातून भी वफात पा जाती हैं, और दूसरी तरफ जो है आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 5 साल है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर के अंदर हुजूर पाक के लिए कितनी डिफिकल्टीज होंगी और आप जो है इस 5 साल की उम्र में किस अंदाज से जो है आप अपनी जिंदगी गुजार रही होंगी। मैंने अर्ज किया कि बचपन के हवाले से बहुत ज्यादा हमारे पास बारीक डिटेल मौजूद नहीं है, लेकिन इतना वाज़े है कि सैयद कायनात बचपन से ही कार रिसालत नबुवत में, तबलीग रिसालत नबुवत और वहदानियत खुदा में हमेशा अपने वालिद के साथ साथ रही हैं और इस तमाम मरहले में मदद करती रही हैं। इस तरह की मदद करती रही कि आपके वालिद ने आपके बारे में ये फरमाया कि देखें, ये जो मेरी बेटी है फातिमा, ये बेटी नहीं बल्कि माँ की तरह है मेरे लिए। माँ की तरह है मतलब क्या कि ये जो इसका रोल है मेरी जिंदगी में, कार्य रिसालत में, कार्य नबुवत में, तबलीग दीन में, घर के अंदर, घर से बाहर, इस तरह मेरे साथ पेश आती हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि मेरी माँ मेरे साथ पेश आ रही है। उम्मो अबीहा, फरमाया उम्मो अबीहा अपने बाप की माँ है। बहुत से वाकयात हैं कि जब बाहर से मुशरिकीन सता के आते थे तो जनाब सैयदा छोटी उम्र होने के बावजूद जाहिरी तौर पर तड़प के जाती थी, हुजूर पाक के जसद ताहिर व अतहर से गंदगी साफ करती थी, कपड़ों को फौरन जो है बदलवाती थी, जख्मों के ऊपर पानी गर्म करके कपड़े भिगो कर उसे जो है साफ करती थी। ये और भी इस तरह के अजीम किरदार रहे हैं। इससे हमें जो चीज मिलती है हम और आपके लिए और खासकर हमारे नौजवान और बच्चों के लिए
सीरियसली
कि घर के अंदर और घर के बाहर देखना है कि जो अच्छा
बोल
काम है, जो नेक काम है, उसे हमें पेश पेश रहना चाहिए। एक अहम वाकया जो तारीख नकल करती है वो ये है कि जब आगाज रिसालत पैगंबर था मक्के में, तो उस वक्त कुरैश ने हिजर इस्माइल में इकट्ठे होकर एक एग्रीमेंट आपस में साइन किया और एक कसम खाई उन्होंने वहां पर, और कहा कि हम मिलकर सारे कबाइल इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह को कत्ल करेंगे। और ये खबर मक्के के अंदर ख्वातीन में गर्दिश करने लगी, और गर्दिश करते करते ये खबर जनाब सैयदा फातिमा जारा सलाम अलैहा, जो कि उस वक्त 5 या 6 साल की थी, आपको जो है इस खबर का इल्म हुआ, दौड़ते हुए फौरन घर चली गई और अल्लाह के रसूल को, अपने बाबा को, ठीक है बाबा भी हैं दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल भी हैं, उसी वक्त से रिसालत की हिफाजत की का एहसास कर रही हैं, नबुवत के हिफाजत का एहसास कर रही हैं। फौरन जाकर ये खबर जो है अल्लाह के रसूल को देती हैं कि मैंने मक्के की खवातीन से सुना कि ये बातें हो रही हैं कि सारे कबाइल ने हिजर इस्माइल में आपको कत्ल करने का प्लान बनाया है, बाबा जान आप जो है घर से बाहर जाएं तो ख्याल रखें अपना, क्योंकि आपके कत्ल की कसम खाई जा चुकी है। इसी तरह अबू जहल बहुत से जाहिलों को लेकर अल्लाह के रसूल के ऊपर जानवर की उजड़ी डालने की गुस्ताखी करता है, और ये खबर जो है मक्के के अंदर फैलती है और खाने खुदा के करीब, क्योंकि ये अमल गुस्ताखाना अमल अंजाम हुआ था, और ये जो है जनाब सैदे कायनात जो उस वक्त 5-6 साल की बच्ची हैं उस तक पहुंच जाती है। आप तड़प के घर से निकलती हैं, जल्दी से जो है खाने काबे के करीब चली जाती हैं और देखती हैं कि वहां पर जो है अबू जहल और कुछ और जाहिल मिलकर हुजूर पाक का मजाक उड़ा रहे हैं, हुजूर पाक के ऊपर जो है जानवरों की उजड़ी डाली गई है। उस वक्त जो है जनाब सैदे कायनात इंतहाई जलालत के साथ उनकी सख्त अंदाज से सरजनिश करती हैं, उन्हें उनकी मजम्मत करती हैं और अपने बाप के हाथ को थामती हैं और लेके घर की तरफ आती हैं। अब न लगा लें कि यहां पर क्यों न कहे उम्मो अबीहा, ये बच्ची 5-6 साल की है जाहिरी तौर पर, लेकिन ये अपने बाप के लिए माँ की तरह है। शेब अबी तालिब में आप जानते हैं कि एक बदतरीन इकोनॉमिकल एक जो है पाबंदियां लगी हुई थी, और जोग्राफिकली भी एक घाटी के अंदर मुसलमान कैद थे, बंद थे, इंक्लूडिंग अल्लाह के रसूल और सैदे कायनात, आप वहां शेब अबी तालिब में मौजूद थी। जो सख्तियां सब ने बर्दाश्त की, पूरी उम्मत ने बर्दाश्त की उस वक्त की, छोटे बड़े बुजुर्गों ने बर्दाश्त की, तो जनाब सैदे कायनात ने भी वो सख्तियां झेली, बर्दाश्त की। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, असल में पैगाम इससे ये मिलता है कि हुजूर नबी आखिर जमान की बेटी, एक कायनात की सैयदा, दो आपके अपने जो है मरकज इसमत व तहारत हैं, सिलसिले इमामत व तहारत हैं, कौसर हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने लिए किसी इम्तियाजी सलूक के कायल नहीं है, अपने लिए किसी स्पेशल स्टेटस का कायल नहीं है, बराबरी के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। अगर मुसलमानों के ऊपर मुश्किलात आई हैं तो नहीं हो रहा है कि चले जी रसूल जादी को पहले हम महफूज कर लें। अगर मुसलमान ये एहसास करें तो उनकी बड़ाई, लेकिन रसूल जादी ने कहती कि मैं तो रसूल की बेटी हूं, पहले मुझे प्रोटेक्शन की जाए, मुझे किसी आरामदेह जगह पर बिठाया जाए, ऐसा नहीं। उसी शेब अबी तालिब के अंदर आप भी मौजूद हैं और वही सख्तियां जो दूसरे सह रहे हैं उसी सख्तियों को आप भी बर्दाश्त कर रही हैं। हिजरत करने के बाद तकरीबन 2 साल हिजरत किए हुए गुजरे थे और मदीने के अंदर कदरे बेहतर जिंदगी हो गई थी और आपकी उम्र मुबारक भी 9 साल या बाज़ रिवायात के मुताबिक 14 साल या 11 साल बताए गए हैं। 9, 10, 11 और 14 का अदद आया है। उस वक्त मौलाए कायनात से आपकी शादी हो जाती है और शादी के लिए रिश्ते कैसे आते हैं वो तफसीलात आप लोग जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। जो घरों में बच्चे हैं और नौजवान हैं, स्पेशली मैं उनसे मुखातब हूँ, बच्चियों से खास तौर पर मुखातब हूँ, तवज्जो से आप लोग सुन लीजिएगा। रिवायात बताती है कि जब जंग होती है मुसलमानों के ऊपर, जंग मुसल्लत की जाती है जैसे जंग ओहद में, और ये जब ओहद की जंग खत्म होती है, मुसलमान बहुत सारे इंजर्ड हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, तो बहुत सी खवातीन मदीने की इकट्ठी हो जाती हैं कि चलें हम अपने अपने जो अजीज व अकरबा हैं उनकी मरहम पट्टी करती हैं। उस वक्त जनाब सैदे कायनात भी उनके साथ आ जाती हैं। कहाँ पर? मैदान जंग में, जो मैदान जंग का बैक जो फ्रंट में के अलावा जो बैक जो जहां से सपोर्टिव वो कैंप होता है वहां पर आती हैं, हुजूर पाक को देखती हैं कि आप जख्मी हैं, हुजूर पाक की जो है मरहम पट्टी करती हैं। इसी तरह जो है आपका जो किरदार है, जंगों की बात आई तो मैं ये इशारा भी करूं, फतेह मक्के के दौरान आप मौजूद थी, जंगे खंदक में आप जो है अल्लाह के रसूल के लिए खाना लेकर जाती थी क्योंकि खंदक खोद रहे थे सिटी के सराउंड में, एक बड़े बड़ा एरिया था जिसके सराउंड में दुश्मन के हमलों से बचने के लिए खंदक खोदी जा रही थी, और मर्द अगर खंदक खोज रहे थे तो खवातीन जो है उनको बैकअप दे रही थी, तो आप खाना लेकर खुद आप चली गई, किसी को नहीं कहा कि ये खाना लेकर जाओ, अपने लिए किसी इम्तियाजी सलूक का कायल नहीं है। इतनी अजीम जिसकी जो वजह तखलीक कायनात है, जिसकी वजह से कायनात खलक हुई है, जिसकी वजह से सिलसिले इमामत व विलायत चल रहा है। हदीस किसा में आप क्या पढ़ते हैं, गर्दिश लेल व नहार है, गर्दिश आफ्ताब व माहताब है, गर्दिश सितारे हैं, ये सब कुछ, ये आपकी ये पानी में जो रवानी नजर आ रही है, फूलों की खूबसूरती नजर आ रही है, ये जो आप नेचर के अंदर एक ब्यूटीनी ब्यूटीनेस देख रहे हैं, तो इसकी असल जो पीछे फिलॉसफी है वो क्या है? साइंस ठीक है उसको कुछ बातें करती है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन असल जो मेन रीजन है वो क्या है? वो ये मुकद्दस जाते हैं, ये मुकद्दस हस्तियां हैं जिनकी वजह से, अगर कि आप ना होते तो ये सारी खूबसूरतियां ना होती। इतनी बड़ी अजीम उल मर्तबत हस्तियां, लेकिन अपने लिए किसी इम्तियाजी उसके कायल नहीं है। हमें जो दर्स मिलता है वो ये मिलता है, हमारे यहाँ एक मसला है कि अगर मौलाना की औलाद है तो वो वही चीजें लोगों से चाहती हैं कि जो स्टेटस आपने मौलवी को दिया है वो स्टेटस हमें भी दिया जाए। अगर किसी और बड़े किसी पॉलिटिशियन की औलादें हैं तो वो भी उसी स्टेटस को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो उसके लायक हैं या ना हैं, हकदार हों या ना हों। इसी तरह सोशल पॉलिटिकल हल मैदानों के अंदर ये एक मुसीबत है हमारी। रसूल जादी खुद इतनी एक अलग शख्सियत, इतनी अजमत रखती हैं रसूल जादी से हट कर भी, लेकिन अपने लिए किसी किस्म की कोई खसूसी जो है स्टेटस या कोई खसूसी इम्तियाजी चीज जो है कभी नहीं मांगती हैं। शादी के बाद मौलाए कायनात के घर में तशरीफ लाती हैं, उस वक्त आम मुसलमानों की जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सूरत हाल थी वो बहुत खराब थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बायकॉट्स चल रहे थे, दुश्मनी का मामला था, जंगें थी, नई नई एक स्टेट बन गई थी, तो सबके लिए क्राइसिस थे। और लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम और सैयदे कायनात तो अब जो है स्टेट के जो मेन लोग हैं, जो हुक्मरान तबका है, जो मेन जो है अफराद हैं उनमें शुमार होता है, लेकिन तारीख बताती है कि बाज़ औक़ात सैयदे कायनात के घर में हसनैन के लिए खाना नहीं होता था, और जो है वो जो दुआएं हैं बाज जो आई हुई हैं, बाज जो अस्कार आए हुए हैं, तो वो अस्कार पढ़ाती थी और सुलाती थी। कभी जनाब सैयदा ने शिकायत नहीं की अपने बाप के पास जाकर कि आप इतनी बड़ी जो नई स्टेट बनी है, इस स्टेट के हेड हैं और आपके नवासे आपकी बेटी घर में भूखे सो रहे हैं। कभी ये बात नहीं कही कि मेरे शोहर जो कि आपको बदर में, उहद में आपको बचाने वाले मेरे शोहर हैं, माले गनीमत भी मिला होगा, खजाने के अंदर आया होगा, लेकिन कहे कि मेरे घर में फाके हैं, कभी ये बात नहीं कही। ये जब हम कहते हैं, जब हमारे उलमा हमें बताते हैं कि फातिमा जहरा सलामुल्लाही अलैहा कयामत तक तमाम औरतों के लिए, तमाम मर्दों के लिए नमूने अमल हैं, तो किस मानी में नमूने अमल हैं? क्योंकि उनकी जात तक तो हम नहीं पहुंच सकते, वो तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तसव्वुर करना हमारे लिए गुनाह है, फिर किस हवाले से नमूने अमल है हमारे लिए? इन चीजों के हवाले से नमूने अमल है। आप जो है अपनी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करने के लिए आप ऊन काटती थी, अल्लाह अकबर, मदीने की, वो जो मदीने की रियासत, मदीने की रियासत कहते हैं, मदीने की रियासत के सरबराह की बेटी अपने और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए घर में मौलाए कायनात भी काम कर रहे हैं और आप ऊन काटती हैं, ऊन काट के मौलाए कायनात को देती हैं। खवातीन आती हैं उनके, उनको जो है बेचती हैं उनसे, ताकि मैशती मसाइल में, घर के अखराजात में, घरेलू अखराजात में थोड़ी सी जो है मदद हो सके। हमारी खवातीन के लिए पैगाम है ये। यहाँ सबके हालात एक जैसे नहीं है, हत्ता यूरोप के अंदर भी खवातीन बहुत सारे काम कर सकती हैं अपनी हया और हिजाब के दायरे में रहते हुए, और घर की मईशत में कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, जनाब सैयदा कायनात ने किया। बस सैयदा कायनात माशाल्लाह राह हैं इन तमाम पहलुओं से हमारे लिए। अकेले घर के सारे काम कर रही होती हैं, और ये घर सिर्फ एक घर नहीं है कि जिसमें लोग जाके दिन भर थक हार के आके रात को सो जाते हैं, बच्चे दिन भर बाहर खेल कूद करके या इधर उधर बैठ के वापस आके घर में, घर एक हॉस्टल की तरह नहीं है, घर एक दरसगाह की तरह है, एक दरसगाह की मानंद है ये घर। अब अगर कोई आलिम ये कहे, या हदीसों में या रिवायात में ये मिले कि हसनैन अलैहिस्सलाम की आपने तरबियत की और आपने सिखाया, तो मुमकिन है कोई और माँ होती तो हम ये जुरत न करते। बहुत से आइमा की माएँ कनीजें रही हैं, कनीजें गुजरी हैं, उनके बारे में ये जुमले हम नहीं कह सकते हैं, बावजूद उसके कि तमाम तर एहतराम है। क्योंकि इमाम के बारे में जब कहें कि इमाम मासूम की किसी ने तरबियत की, तो उसका स्टेटस इमाम मासूम से ऊपर या बराबर में होना चाहिए। यहाँ पर सैयदे कायनात जैसी माँ हो तो हम आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे कह सकते हैं जी आपने हसनैन की तरबियत की। अगर करबला में इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा बने हैं, तो इसके पीछे सैयदे कायनात जैसी माँ की तरबियत है। अगर इमाम हसन मुश्तबा अपने जाहिल लोगों के जुल्मों और तीरों का शिकार हुए और सब्र के पहाड़ और इस्तकामत के पहाड़ और हिकमत के दामन को आपने नहीं छोड़ा, तो इसके पीछे सैयदे कायनात जैसी अजीम उल मर्तबत हस्ती की तरबियत शामिल है। इसमें कोई छुट्टी के इमाम है वो है, ये हम और आप नहीं समझते कि उनके अपने मकामात तो उलिया वो अरफा वो मदारिज दर्जात का लेवल क्या है। ये वाज़ह है हमारे लिए कि जब मासूम ये फरमाए कि सैयदे जद्दतुना फातिमा हुज्जतुन अलैना, और हमारी जो है दादी फातिमा हम पर हुज्जत है, तो हम पर मतलब किस पर? मासूम पर। मासूम पर है हुज्जत कौन हो सकता है? जो मासूम से ऊपर होगा वही उस पर हुज्जत हो सकता है ना। इस्मत के अंदर मदारिज है, वो मैं और आपकी समझ में नहीं आते, हम बात भी नहीं करने की जुरत नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी समझ में आता है कि इस्मत के मदारिज है। वगरना कायनात के इमाम जो मलकूत और तकवीन और तशरी का कंट्रोल रखता है, खुदा का नुमाइंदा है, उसके ऊपर खुदा ही हुज्जत हो सकता है या रसूल खुदा हुज्जत हो सकता है। कोई और हुज्जत तभी हो सकता है जो उनका मकाम और मंजिलत उससे ऊपर हो। तो जब ये फरमाते हैं कि जद्दतुना फातिमा हुज्जतुन अलैना, वाज़े है, लिअन्न अल-खल्क़ फुतिमु अन्मार, वाज़े है। तो तरबियत इसमें फिर मुमकिन है, तालीम मुमकिन है, क्योंकि जो आला है वो अदना को तरबियत दे सकता है, जो जानता है, जो ज्यादा जानता है। बहरहाल ये मैंने अर्ज किया कि इस वादी में जाना मुश्किल काम है हमारे लिए, क्योंकि वो अल्फाज नहीं मिलेंगे जिससे मैं अपने महसूसात को आप तक पहुंचा सकूं। शायद आप उसको उस तरीके से समझ ना जाएं, सुन ना सकें, फिर हम और आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाएंगे, लिहाजा इनको रहने दें। तो लिहाजा आपका घर एक दरसगाह है, आप इस दरसगाह की मुअल्लिमा हैं, और आपकी तरबियत से कौन निकला? सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा फातहे करबला वो शाम कूफा व इला आखरी। किसने तरबियत की? फातिमा जहरा सलाम अलैहा। बस ये हमारे लिए मशाल रहा है। मैशती मसाइल हैं, सियासी बोहरान है, हिजरत की है, घर बार छोड़ा है, वालिदा से महरूम है, वालिदा के बगैर पली बड़ी हैं, उसके बावजूद चले इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं, अगर कोई उसमें ना भी लाना चाहे, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, ये दो अजीम उल मर्तबत मासूम हस्तियां आए तत्हीर के जुमरे में तो नहीं है ना, मासूम है। खुब इनकी इस्मत कहाँ से हासिल हुई है? सैयद कायनात की तरबियत की वजह से, सैयद कायनात की तालीम की वजह से। उस वो जो घर था दरसगाह, मिनल महदी इलल्लाह, उस मिनल महद से तरबियत पाई इन्होंने, फिर क्या हो, सानिये जहरा बन गई। यानी सानिये जहरा मतलब क्या? यानी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तजल्ली, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का अक्स पर तो, फातिमा जहरा सलाम अलैहा की शबीह, शबीह है कामिल व अकमल कौन है? हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा, हजरत उम्मे कुलसूम। क्योंकि लोगों ने देखा कि जिस इनकी वालिदा थी, इसी तरह ये जो है, ये बीवियां हर मैदान में, हर हवाले से, घर से लेकर बाहर तक, बच्चों से लेकर, हो सकता है बाज औकात मैं एक अच्छा बाप हूं घर में, लेकिन एक अच्छा माशरे का जिम्मेदार आदमी नहीं हूं, एक अच्छा हक के रास्ते का राही नहीं हूं, एक अच्छा मजलूम का हामी नहीं हूं, मेरी इज्तिमाई जो लाइफ है, सोशल जो लाइफ है, वो सिफर है। घर के अंदर मैं एक अच्छा आदमी, एक वक्त मुमकिन एक आदमी सोशल बहुत अच्छा है, घर के अंदर सिफर है, अपनी फैमिली को लेकर हमेशा झगड़ालू है, बच्चों के बारे में केयर ही नहीं करता, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता। खुब ये शख्स कामिल तो नहीं है, इस शख्स ने कमाल की सीरत पर तो अमल नहीं किया है, हम कमाल की सीरत पर अमल करते हैं। तो लिहाजा ये जो बीबी ने जिस औलाद को तरबियत की, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसुम, इनको देखें आप घर से लेकर बाहर तक, माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, मुहाफिज़ इस्लाम की शक्ल में, मुदाफिए इमामत विलायत की शक्ल में, वो बिल्कुल माँ के परतों की तरह। तो लिहाजा ये समझने, ये हम कहते सीरत सैयदा कायनात कयामत तक मशाल को कैसे, किस किस हिस्से में मशाल रहा है, कहाँ कहाँ पर नमूने अमल है कि कायनात की पूरी औरतों को कहें, कायनात के मर्दों को कहें कि आओ भाई इस सीरत के ऊपर चलो, ये रोल मॉडल आपके लिए। तो कैसे उस रोल मॉडल को हम खोलें, इंशाल्लाह खुतबे फदा किया मैं अर्ज करूंगा कि खुदा ने तौफीक दी और जो है सैयद कायनात की लुत्फ करम रही, तो अर्ज करेंगे कि उसमें क्या बयान फरमा रही। आप देखें हालात थोड़े बेहतर हो जाते हैं घर के अंदर, शहर के भी हालात बदलते हैं, उम्मत मुस्लिमा जो शहर में रहती थी उनकी भी इकोनॉमिकल हालात थोड़े से बेहतर होते हैं, अच्छाई आ जाती है, तो हुजूर पाक कहते हैं चलो भाई शहर के भी हालात बदले हैं, अब आपके घर में भी हम खिदमत के लिए एक खिदमतकार खातून भेजते हैं, जनाब फिरजा सलाम अलैहा। अब आपने हजारों बार सुना है, लेकिन ये सुनना काफी नहीं है, अमल दरामद करना है। हम घर में किसी को मुलाजिम रखें, उसको जुल्म तशद्दुद हो जाए, तो ये सीरत सैयद कायनात के खिलाफ है, और फिर हम सोचें कि हम सैयद कायनात हमसे राजी भी रहेगी, कैसे राजी रहेगी? वो सैयद कायनात जो अपने घर की मुलाजिमा और अपने दरमियान घर के कामों को तकसीम करती हैं, ये मशहूर वाकया है हमारी किताबों में, जनाब सलमान मिन्ना अहलल बैत का, कि सलमान कहते हैं मैं एक दिन जनाब सैयदा के घर गया, मैंने देखा कि जनाब सैयद कायनात हाथ से चक्की पीस रही हैं, इस तरह आटा डाली तक्की पीस रहे हैं, हसनैन अलैहिस्सलाम में से एक आपके जो है पहलू में है, एक हाथ से आपने उनको थामा हुआ है, और वो जो है बच्चा है गिरिया भी कर रहे हैं। जिनाब फिजा को देखा कि वो खड़ी हैं और जिनाब सैयद कायनात से बातें करती जा रही हैं, कह रहे मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जिनाब सैयद कायनात की दरबार किया, मैंने कहा बीबी फिजा को आप चक्की दे दें, आप बच्चे को संभालें, छोड़ें कि फिजा चक्की को पीसे। फिजा ने बात काट के कहा सलमान, मैंने सईदा को कई बार गुजारिश की लेकिन जनाब सईदा कायनात मानी नहीं। तो जनाब सईदा कायनात फरमाने की, सलमान हमने घर के काम तकसीम किए हैं, आज मेरी बारी है। यानी बारी है मतलब क्या, घर की चक्की पीसना, घर के काम करना, झाड़ू मारना, सफाई करना, खाना बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। रही बात हसनैन, ये तो मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को मैंने पालना है, मैं आई के हवाले कर दूं, जो कल्चर है हमारे पास, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा बच्चा है। भाई रही बात घर के काम तो हमने तकसीम किए हैं, अब अंदाजा लगा ले जिनाब सईदा के काम डबल है, हसनैन को भी संभाल रही है, जो तकसीम शुदा काम है जो आपने खुद तकसीम किया है उसे भी अंजाम दे रही है। अल्लाह अकबर। अब हम और आप अपनी जिंदगी, ये नमूने अमल नहीं है, ये एक्सपायर हो सकता है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट हो सकती है। हाँ, शक्ल सूरतें बदल सकती हैं, तरीकेकार बदल सकता है, लेकिन इन प्रिंसिपल अपनी जगह पर इसी तरह कायम है। कहीं आज मेरी बारी है, फिजा की बारी नहीं है। फिजा को कैसे मैं कहूं तुम चक्की पीसो, रही बात बच्चे को संभालना, मेरा बच्चा है, मैं खुद संभालता। इसलिए पांचवें इमाम इमाम बाकिर अलैहि सलाम फरमाते हैं कायनात की इस अजीम हस्ती के बारे में, फरमाते हैं लकत कानत मफरूजत ताअती अला जमी मन खलक अल्लाह मिन अल जिन्न वल इंस व तैर वल वुहूश वल अंबिया वल मलाइका। आज के मेटेरियलिस्टिक दौर में मैं और आपको इस तरह की हदीसें समझना मुश्किल होता है, मुझे पता है। बाज लोगों के लिए ये हजम नहीं होती और बाज लोग समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। पांचवें इमाम फरमाते हैं लकत कानत मफरूजत ताअती, जिनाबे सैयदे कायनात की इताअत सब पर, तमाम मखलूक के खुदा पर, तमाम जो खुदा की खिलकत है उस पर क्या था, फर्ज था। मिनल जिन्नी वल इंस, ये वाजह है आपके लिए, अरबी इंसान और जिन्नू के लिए भी। व तैरी, तैर यानी परिंदे, वलवहूशी जानवर, जानवर यानी तकवीन पर, यानी नेचर जिसको आप कहते हैं, तबीयत पर, नेचर भी, नेचर के ऊपर फर्ज है, दरख्तों पर फर्ज है, जानवरों पर फर्ज है कि वो इताअत करें जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की। फिर आगे फरमाते हैं वल अंबिया, तमाम नबियों पर फर्ज है, वल मलाइका, पूरे के पूरे मलाइका पर फर्ज है। ये जो जिब्रील अमीन आते थे सहीफे फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा तरतीब पाई है, तो ये जिब्रील तो हर नबी के पास नहीं आता था, हम भी आते थे, दीगर नबी दीगर मलाइका आते थे, जिब्रील अमीन मखसूस नबियों के पास आते थे। जिनाब सैदे कायनात का आप मकाम व मंजिलत देखें, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं कब, रसूलुल्लाह की रहलत के बाद। ये सहीफे फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा, मुसहाफ फातिमा कब लिखी गई है, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के हबीब की वफात के बाद, वो जो 75 या 95 दिन हैं कि रसूलुल्लाह की वफात से लेकर जनाब सईदा कायनात की शहादत तक, तकरीबन 75 75 to 95 days बताया गया है ना, ये बिटवीन 75 to 95, ये जो हम अय्याम फातिमिया मनाते हैं ये कब से शुरू हुआ है, वही वो जो 75 to 95 days हैं उसके अंदर जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो हादिसात हुए हैं, उसकी वजह से ये अय्याम फातिमा क्रिएट हुआ ना। आप देखें फरमाते हैं सब पर, नबियों पर, मलाइका पर, क्यों ना हो, आखिर इतनी अजीमुल मर्तबत हस्ती और अमली जिंदगी के अंदर देखें जी, जिस पर देखें परंदों और चरंदों और नेचर और तबीयत और मलकूत की इताअत वाजिब है इस हस्ती की, इस हस्ती की आप अमली जिंदगी देखें, अमली सीरत को देखें, आपकी जो हयात का अहम तरीन अरसा है वो ये जो 75 to 95 days हैं, इसमें आपकी जो है हयात का एक अमली उरूज हमें दिखाई देता है, जो अय्याम फातिमा की शक्ल में हम मनाते हैं। मसलन इसमें क्या हुआ है, मैं बस खत्म कर रहा हूं, आपकी जहमतें तमाम कर, तो इस इन दिनों में ये 75 to 95 days हैं, इसके अंदर क्या हुआ, एक तो आपको पता चल गया मुसहाफ फातिमा जिब्रील अमीन कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली पैगाम लेके आते थे, जनाब सईद कायनात मौला अली को बताकर लिखवाती थी हर चीज को, बहुत कुछ है इसके अंदर, अब जो रिवायात हैं टाइम नहीं अभी मेरे पास। दूसरा जो है इसी के अंदर पॉलिटिकल और सोशली बड़े डिफिकल्ट मराहिल आए हजरत सैदाए कायनात सलामुल्लाह अलैहा के गिराने के ऊपर, मौला अली अलैहि सलाम के गिराने के ऊपर, पंजतन पाक के गिराने के ऊपर बड़े मुश्किल हालात आए हैं। नंबर एक, अल्लाह के रसूल की वफात के बाद इलाही जो ओहदा था, खुदा की तरफ से जो एक जिम्मेदारी दी गई थी मौला अली अलैहि सलाम को, ताकि उम्मत दुरुस्त रास्ते पर रहे, उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वो तशरीई मामला था। उसमें एक तरफ एक हिस्सा पब्लिक से रिलेटेड है उम्मत से, एक हिस्सा इमाम से रिलेटेड है। तो उम्मत से रिलेटेड जो पार्ट था उस पार्ट पर कब्जा कर लिया, यहीं से जो है मसाइल शुरू हो गए। यह सब सबसे दीन दीन पर कब्जा हो गया, मसनद खुदा पर, विलायत तशरी पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। इन द सेम टाइम क्या किया, देखा कि रसूल की बेटी, कायनात की सैयदा और मौला अली अलैहि सलाम कोई ऐसी रेजिस्टेंस पैदा ना करें, कोई सोशल जो है एक रेवोल्यूशन या मूवमेंट शुरू ना करें, कहा इनको प्रेशर में रखो। प्रेशर के लिए क्या किया कि जो कि एक फदक की एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ी एक लैंड थी, वो उस लैंड को क्या किया कि वापस कब्जा छीन लिया। मसलन ये रिवायत में मिलता है कि जो फदक के जमीन पर काम करने वाले लोग थे, जो उस लैंड में फार्मर्स थे, जो मुलाजिम थे, वो दौड़ते हुए दरवाजे जनाब सैयद जहरा में आए, दकुल बाप किया, मौला अली अलैहिस्सलाम आए तो कहा मौला जो है ना हमें निकाल दिया है, जमीन से बाहर कर दिया, कब्जा कर लिया जमीन के ऊपर। कहा कैसे, क्या हुआ? कहा कि खलीफा की तरफ से कब्जा ग्रुप आ गया है, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कहा कि ये तो बेतुलमाल का हिस्सा है और बेतुलमाल में डाल देंगे, ये तो उनकी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। जनाब सैयद कायनात को पता चला कि क्या, कहा कि ऐसा किसने, किसके ऑर्डर से हो रहा है भाई, मेरी जमीन पर मिल्कियती जमीन मेरे बाबा ने मुझे दी है, उसके ऊपर जो है ये कब्जा ग्रुप की तरह से आ गया। कहा कि खलीफा का ऑर्डर है भाई, खलीफा के जो है पुलिस आ गई है, उन्होंने कब्जा कर लिया जमीन के ऊपर। ये दूसरा बड़ा मसला था। अब उसके बाद फिर सिलसिला बढ़ता गया। अभी तक आपने मेरी गुफ्तगू में भी नहीं सुना, किसी और आलिम की गुफ्तगू में भी, किताब में भी नहीं पढ़ा होगा कि कभी जनाब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैह ने कोई, अलैहा ने कोई पब्लिक स्पीच की हो, कभी की है पब्लिक स्पीच का सुना है आपने? नहीं। हाँ, खवातीन से मिलकर एक सहाबी ने सवाल किया, खातून ने सवाल किया, सवालात किए, ये चीजें हैं कि एक पब्लिक गैदरिंग में स्पीच की हो, मसलन मदीने मस्जिद नबवी में आकर स्पीच की हो, या जो है किसी और जगह में किसी बड़ी गैदरिंग में कोई खुतबा इरशाद फरमाया, ऐसा कोई सुना है आपने? नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। लेकिन अब शुरू होता है यहाँ से, ये 75 to 95 days, यहाँ से आपके खुतबे यहीं पे आते हैं। दो दो खुतबे हैं, वही दोनों खुतबे यहाँ पर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। घर पर अटैक होता है, आसान नहीं है, घर पर अटैक किया जाता है। क्यों? अभी तक देखें सैदे कायनात अजमत रखती थी, फजाइल लोगों को पता था कि सब जानते थे कि जिनाब सैदे कायनात इमरातुन सालिहतुन लैसा लहा मसीलुन, यानी एक ऐसी सालिह अजीम खातून है कि उसकी सानी कोई भी नहीं है, इसकी वजह से लोग कुछ एहतराम करते थे। जो ही जिनाब सैदे कायनात सालेह से मुसलेह बन गई, इसलाह करना शुरू कर दिया, सारे मसाइल शुरू हो गए। घर तक पर हमला करना शुरू कर दिया, दरवाजों पे आग लगाना शुरू कर दिया, आपको फिजिकली आपको टॉर्चर किया गया। अल्लाह अकबर। दो जुमले हैं, एक जिनाब सैदा का जुमला है और एक मौलाए कायनात का जुमला है। बस ये दो जुमले हमें बहुत कुछ समझाते हैं। आसान नहीं है। मौला अली शेर खुदा मैदान जंग में सैकड़ों की तादाद में बड़े से बड़े फाइटर, माहिर एक्सपर्ट फाइटर, जिनको आजमाया गया हो, जिन पर लोग भरोसा करते हो, वो मौलाए कायनात के सामने आकर कांप के डर जाते थे। ये मौलाए अली अलैहि सलाम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौला अली सलाम के ऊपर किसी दुश्मन ने कामयाबी से कोई अटैक किया, कभी नहीं हुआ। 50-100 के तरीके की शक्ल में पूरा एक प्लान के तहत उनके अच्छे सिलेक्टिव जो फाइटर्स थे वो मिलकर प्लान के साथ अटैक करते थे, मौला अली सलाम के साथ करीब आकर भाग जाते थे डर के मारे। अब आप देखें, ये है ना मौला अली सलाम की शुजाअत, बहादुरी, महारत जंग, तलवारबाजी, नेजाबाजी आसान नहीं है। मैं बताऊं आप सुने, बेनवान एक बीवी के आसान नहीं है, बेनवान एक इमाम की फॉलोअर्स के आसान नहीं है, बेनवान एक खातून के आसान नहीं है। थोड़ी देर के लिए इस तरीके से सोचिएगा, मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे आते हैं, जबरदस्ती घर के अंदर घुसते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी बांधते हैं जिस तरह जानवरों को हम बांधते हैं, और खींचते हुए जबरदस्ती लेके जाते हैं, पीछे से चली जाती हैं और अपने जो है दस्त मुबारक को आगे बढ़ाती हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ को पकड़ के खींचती हैं और चीखती हैं, कहती हैं कि खल्लू, छोड़ दो छोड़ दो, मेरे चचा साहब को छोड़ दो। लेकिन ये मलऊन जो जानवरों पे घोड़ों पे मारने के लिए जो एक ताजियाना होता है, उस ताजियाने को पहले पाजुओं पे मारते हैं। और हमारी जो तारीख की किताबें हैं और अहले सुन्नत की जो अल इमामा व सियासा इब्न फरीद जैसी किताबें हैं, उसके अंदर कहते हैं फवका अला अल अर्ज, में नहीं तर्जुमा कर सकता, कह रहे कि इतने में मैंने देखा कि रसूल जादी जमीन पे गिर गई, किसी मलऊन ने धक्का दिया, रसूल जादी यूं जमीन के ऊपर जाकर गिर गए। अल्लाह अकबर, यहाँ पर इमामत के दिफा के लिए आती है, यहाँ पर विलायत के दिफा के लिए निकलती हैं। देखें, जब इसलाह का काम शुरू कर दिया, बिगाड़ को तब्दील करना शुरू कर दिया, तो कायनात की सैयदा के घर में, मौलाए कायनात के घर में भी लोग आए, क्योंकि इसलाह से क्या हुआ, गरज और मरज रखने वालों को तकलीफ शुरू हो गई। जब तक सालेह थी बीबी, किसी ने कुछ नहीं कहा, जू ही इसलाह और मुसलह बनने शुरू कर दिया, मुखालिफत शुरू, मुखालिफत का लेवल इधर तक गया कि फिर जो है कम से कम अगर रसूल जादी का ख्याल नहीं, एहतराम नहीं रहा था, तुम इस्लाम को छोड़ चुके हो, तो एक खातून है और तुम मुस्तंडे मर्द हो, तुम उठा के ताजाना मारते हो उनसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए देखें, ये 75 to 95 जो डेज हैं, इसके बारे में शिकायत करती हैं, शिकायत करती हैं, कभी खुदा की तरफ रुख करके शिकायत करती हैं, कभी अपने बाबा को मुखातब करके शिकायत, अपने बाबा को मुखातब करके कहती हैं, बाबा जान सुब्बत अलैह मसाइबुल्लाह अन्नहा सुब्बत अलैह। ये बड़ा अजीब जुमला है, मासूम मुबालिगा नहीं करता है, मासूम बेमकसद शायरी के अशआर, बेमकसद किस्म के शेर नहीं बोलता है। जब सैयदे कायनात कह रही हैं कि ऐसी मुसीबतें पड़ी हैं कि अगर इन मुसीबतों को आप जो है ना फिजिकल उसमें डाल दें और सूरज के आगे खड़ी कर दें, तो यकीन करें कि दिन दहाड़े जो सूरज है उसके सामने ये मेरी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, तो खाली जो है पूरी जमीन तारीख हो जाएगी, तारीखी नजर आ जाएगी। एक तो ये जुमला है, मालूम होता है कि कितनी सख्त मुझे मुश्किलात स्वरूप, जो दरवाजे में आग लगाना नहीं है, मुश्किलात स्वरूप ताजना मारना नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मौलाए कायनात जो इमाम मासूम है, जो वली मासूम है, उसको छोड़कर नाअहलों के पीछे जाना, ये बड़ी मुसीबत है, ये बड़ी तकलीफ दे मुसीबत है। और दूसरा बड़ा जो मसाइब का जुमला है, वो मौलाए कायनात का जुमला है, वो अली शेर खुदा की, कभी आपने नहीं सुना होगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम किसी वक्त रोए हों। दो तीन जगहों पे हैं, एक तो मेहराब इबादत में गिरिया अली मशहूर है, दूसरा जब अल्लाह के रसूल की रहलत हुई तो मौलाए कायनात के बारे में कहा गया है कि आपने गिरिया किया है, और एक वक्त वो है जब जनाब सैयदे कायनात की दफन का वक्त है, कि कह रहे हैं कि पहले दोनों से ज्यादा कैफियत में अली दाड़े मार मार के रो रहे थे, ये रिवायात के अंदर मिलता है। और जुमले भी देखे तो मालूम होता है कि ऐसा है, कब्र मुतहर पर जसद ताहिर अतहर सैदा कायनात को उतारने के बाद एक जुमला कहते हैं, जुमला कहते हैं, सर झुकाते हैं और कहते हैं, सतुनबी उखा इबनत का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी आपको बताएगी। व तदा फिर उम्मत अला हसमिहा, कि किस तरह पूरे लोग, पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो गई थी कि सैयदा कायनात को हटा दो, इनके वजूद का खात्मा कर दो, क्योंकि ये सालेह बन गई हैं, क्योंकि अब इस्लाह करना चाहती है, क्योंकि अब अमरुल मारूफ के लिए निकली है, क्योंकि अब ये मदीने में आ गई है। जब तक सैयदा कायनात एक नेक खातून के तौर पर थी तो खामोश थे, जब उन्होंने नेकी फैलाने वाला काम कर दिया तो मुखालिफत शुरू कर दी। कह रही वो तदाफर अल उम्मत वाला हस्मिहा, पूरे के पूरे लोग इकट्ठे हो गए, आपकी बेटी बनाए बताएगी कि आपके बाद जो है इनके साथ क्या हुआ। मैं परवरदिगार आलम से दस बदुआ हो तो हम कि परवरदिगार हम सैयद कायनात के मानने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें कायनात की इस अजीम हस्ती की सीरत को जो हमारे लिए नमूने अमल है अच्छे तरीके से समझने पढ़ने दूसरों को सिखाने खुद उस पर अमल करने दूसरों को अमल कराने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारा वास्ता ताल्लुक रिश्ता और हमारा जो गठजोड़ है वो कुरान और इतरत से कभी भी अलग न फरमा, हमें हमेशा कुरान और इतरत की खिदमत में दामे दिरहमे सुखने कदमे रहने की तौफीक इनायत फरमा।